ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सद्गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान वृंदावन में आप सबका प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद के आठवें अध्याय का दूसरे श्लोक का आज पाठ करेंगे। तो क्या हम सुनने जा रहे हैं प्रहलाद महाराज के अपने सहपाठियों को जो उन्होंने प्रचार किया उसका जो प्रभाव हुआ वो गुरु पुत्रों से देखा नहीं गया। बहुत समझ की बात है। आप प्रचार करेंगे कोई भक्त बनेगा तो कुछ लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां श्री प्रहलाद महाराज का अपने सहपाठियों को जो प्रचार था उसका इतना प्रभाव हुआ कि सारे असुर पुत्र भक्ति के मार्ग में भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया और गुरु पुत्रों की शिक्षा को इनकार कर दिया। तो गुरु पुत्र अब क्या करते, भयभीत हो गए। किससे? हिरण्यकशिपु से। उसको शिकायत लगाने जाएंगे। तो इससे डरना नहीं चाहिए कि हमारे प्रचार से, अगर हमारे प्रचार से कुछ भक्त बने और लोग हमारी शिकायत करें या कोर्ट में केस करें या राजा को बताएं तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। समझना चाहिए कि जब अच्छे काम में कोई रुकावट डालता है इसका अर्थ है कि अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। तो ये संड और अमर की शिकायत कृष्ण के सॉरी नरसिंह देव के प्रकट्य का कारण बनेगी। ये नरसिंह देव के प्रकट्य का कारण बनेगी। सो आइए दूसरे श्लोक का पाठ करते हैं। अथ आचार्य सुतस्तेषां बुद्धिम् एकांत संस्थिता आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञा आवेद्यत तथा सो कल के अथ का मतलब है इस वजह से, इस कारण। तो वो कारण क्या है? कल नारद जी ने बोला। ये प्रवचन कौन कर रहा है? नारद जी कर रहा है। कहाँ कर रहे हैं? हस्तिनापुर के राजमहल में कर रहे हैं। कौन सुन रहा है? महाराज युधिष्ठिर और सारा पांडव और अन्य, और क्योंकि ये राजसूय यज्ञ में हो रहा है तो पूरे विश्व से आए हुए ऋषिगण, राजा महाराजा बड़े, उनके बीच में ये प्रवचन हो रहा है और ये हस्तिनापुर में हो रहा है प्रवचन। सो नारद जी ने कल कहा था, नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिए उपदेशों की सराहना की, उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। पहले सराहना की और फिर उसको ग्रहण किया। इससे भी बहुत अच्छा संकेत मिलता है, प्रचार जब करने जाओ तो पहले लोग आपको स्वीकार करें, फिर आपकी बात को स्वीकार करेंगे। ये पहला सिद्धांत जीवन में याद रखो। आप जाके हथौड़े मारोगे कि तुम नास्तिक हो, तुम कर्मी हो, तुम पापी हो, तुम ऐसे हो, कि तो जाओ, तुम्हारा क्या लेता हूं, अपने घर का खाता हूं। पहले तुम्हें स्वीकार करें तो तेरी शिक्षा को स्वीकार करेंगे। तो पहले प्रहलाद महाराज की सराहना की, मतलब उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से, उसके प्रचार से वो प्रसन्न हुए, तब उन्होंने गंभीरता से उसको ग्रहण किया। ये बहुत बड़ा मानस मनोविज्ञान है। पहले आपको स्वीकार करें, फिर आपकी बात को स्वीकार करें। अब प्रहलाद अब इसको स्वीकार किया तो अस्वीकार क्या किया? उन्होंने शंड तथा अमरक, जो गुरु पुत्र थे, नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकवादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। भाई एक ही चीज रहेगी, या तो भक्त का प्रचार रहेगा या तो भौतिकवादता रहेगी। तो ये है उत्तम अधिकारी का प्रचार का परिणाम। उत्तम अधिकार जब प्रचार करता है ना, तो भगवान की ओर लाता है और भौतिकता से मुक्त कर देता है। ये एक महाभागवत के और प्रहलाद महाराज तो 12 महाजनों में एक महाजन है ही, और दूसरे महाराज महाजन के शिष्य हैं नारद प्रहलाद, तो दो महाजनों की बात हो रही है। तो उनके प्रचार का परिणाम ये है। अब अर्थ का मतलब, अब इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, इसका शब्द अर्थ का रस आस्वादन कर लीजिए। अर्थ का अर्थ है तदुपरांत। तदुपरांत का मतलब जब सारे असुर पुत्र प्रहलाद के पक्ष में हो गए और इनकी शिक्षाओं को तिरस्कृत कर दिया। अब ये बहुत हो गया, नहीं पढ़ाई है आपकी बात, ऐसा वातावरण कक्षा में हो गया। तो उन्होंने क्या किया? आचार्य सुता, आचार्य के पुत्र। ये कौन से आचार्य के पुत्र हैं? शुक्र आचार्य के पुत्र। और शुक्र आचार्य भगवान की एक विभूति है भगवत गीता में। हाँ, क्या है? हाँ, उष्णा कवि ही, कवि नाम उष्णा कवि ही। और कवि कहते हैं बहुत बड़े विद्वान को, और उसमें उष्णा कवि मैं हूं। तो ऐसे कोई साधारण व्यक्ति ये भी नहीं है शुक्र, आकाश में तारे के रूप में आज भी है, ग्रह है, 7 ग्रहों में एक शुक्र। उसके पुत्र हैं दोनों शंड और अमरक, और इनका सिद्धांत जो है वो है हिरण्यकशिपु का सिद्धांत। और हिरण्यकशिपु का सिद्धांत क्या है? मैं ही भगवान हूं और मेरी पूजा करो। ये है नास्तिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बस इस दुनिया में नास्तिक सिद्धांत वाले अधिक लोग हैं। मेरा जैसे मन करेगा वैसे करूंगा, ये है नास्तिक सिद्धांत। ये असुरी सिद्धांत है। तो ये असुर के पुत्रों ने क्या किया? तेषाम, उन असुर पुत्रों की बुद्धिम, बुद्धि, एकांत संस्थाम, केवल एक ही विषय भक्ति में स्थिर अलक्ष्य देखकर भीत भयभीत होकर त्वरित तुरंत राज्ञे राजा हिरण्यकश्यपु से आवेद्यत कह सुनाया यथा उचित ढंग से। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद। जब शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमरक ने देखा के सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए। अतएव वे असुर राज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। कौन सा इस अनुवाद में सबसे अच्छा आपको शब्द लग रहा है? भक्त का संग, प्रहलाद के संग से। तो इसमें हमें क्या सीखना चाहिए? आज जीवन में भक्त का संग सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति का जन्म भक्त के संग से होता है और इसी को भी कक्षा कहा है प्रभुपाद जी ने। ये जो हम भागवत की कक्षा है ये एक भक्त संग है और भक्त संग का एक ही अर्थ है भक्त भगवान की कथा की चर्चा। भक्त संग की परिभाषा क्या है कोई पूछे तो इसका उत्तर क्या है? भक्त संग का अर्थ है हरि कथा और कोई भक्त संग का अर्थ नहीं है। तो प्रहलाद महाराज के संग के कारण संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ गए। इसमें भी एक बहुत रहस्य की बात है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ गए। ऐसे तो नहीं कहा कि कृष्ण भक्ति पैदा हुई, ऐसे तो नहीं कहा ना। इसका क्या अर्थ है? सबके हृदय में कृष्ण भक्ति पहले ही पड़ी है, उसको अच्छे संग से श्रवण कीर्तन से जगानी है। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। आप ये नहीं कहिए कि मैंने प्रचार किया इसलिए ये भक्त बन गए। भक्ति तो पहले से उसके हृदय में भगवान ने डाल के रखी है, आपने केवल उसको जगाने का काम किया। इसलिए सारा श्रेय भगवान को देना चाहिए और स्वयं को नहीं लेना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है, मैंने ये कर दिया ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भक्ति तो पहले भगवान ने भर के भेजी है, आपने केवल उसको जगाया है। तो जगाने वाले को भगवान कहेगा कि अच्छा कार्य किया है, मुझे बहुत प्रिय है। कब? जब हम कहेंगे ये भगवान की भक्ति भगवान के लिए हमने केवल जगाई है। ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये हमारे को निम्रता बनाने के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है। और ये भगवान ने तो भगवत गीता में स्पष्ट कह दिया है, निमित्त मात्र भव सव्यसाचन, केवल निमित्त मात्र बनो, तुम अपने कार्य को करो, भगवान तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो। तो प्रहलाद ने अपना कार्य किया और भक्ति में वो आगे बढ़ने लगे। और प्रहलाद महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इतना बड़ा प्रचार किया है, नहीं कहा। परंतु प्रचार देखा किसने? शुक्राचार्य के पुत्रों ने कहा ये बड़ा प्रचार हो गया। एक ये है अंतर एक शुद्ध भक्त में, उसको पता नहीं लगा प्रहलाद को मैंने प्रचार किया है और भक्ति जागृत हो गई। ये तो पहले से ही भक्त थे, भक्त तो थे ही, मैंने तो केवल उनको याद दिलाया। परंतु जो अभक्त है उनको आपका भद्र कार्य अभद्र लगेगा, अरे ये भक्त बन गए, वो सह नहीं सका, सह नहीं सके। ये वो सह नहीं सके, अतएव वह असुर राज के पास गए, डर गए। डर क्यों गए? पहले ही हिरण्यकशिपु ने उनको दो बार कह दिया था कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चा खराब हो रहा है, तुम इनको क्या शिक्षा दे रहे हो। तो वो पहले से ही हिरण्यकशिपु से डरे हुए थे, और जब उन्होंने सब काम बिगड़ता देखा, हिरण्यकशिपु के शिक्षाओं के विपरीत देखा, तो डर गए। जो डर गया वो मर गया। इसका मतलब हमारे प्रचार से कोई डर गया तो वो मर गया, आप चिंता मत करो। ऐसा मत समझो कि जो डर गया, अब जो डर गया वो आपका क्या बिगाड़ेगा। तो भक्त को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। दुनिया में लोग बहुत से हमारे प्रचार से डर जाएंगे, और यही हमारे प्रचार की सार्थकता है। प्रभुपाद जी कहते, अगर लोग डरे नहीं तो आपने प्रचार क्या किया? अगर आपके विपरीत लोग जागे नहीं तो आपके प्रचार का कोई प्रमाण नहीं है। लोगों को जरूर परेशान होना चाहिए। किसको? असुरों को। इसका मतलब प्रहलाद ने अपने प्रचार से असुर बालकों को तो भक्त बना गया, और जो बड़े बड़े पूजन आचार्य के पुत्र थे उनको दिखा दिया कि ये भक्त नहीं है, उनको सबके सामने प्रकट कर दिया कि ये भक्ति के विरोधी हैं, विरोधी पक्ष में है। तो ये एक बड़ा अच्छा सिद्धांत। कौन से दो सिद्धांत हमने सीखे? भगवान के भक्तों से भक्ति उत्पन्न होगी, दूसरा भक्ति पहले से सबके हृदय में है, हमको केवल उसको थोड़ी सी हवा देनी है, चिंगारी पहले से है, हमको केवल हवा देनी है। भगवान ने सबके हृदय में अपनी प्रेम भक्ति को भर के भेजा है, इसलिए हमको थोड़ा प्रयास ही करना है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आगे, हमारी भक्ति, हमारे प्रचार से लोग जरूर भयभीत होने चाहिए। कौन? जो असुरी प्रवृत्ति है वो प्रकट होना चाहिए। वो प्रकट होंगे तो संसार में समझ में आएगा कि हमारा प्रचार कार्य कर रहा है। अब श्री प्रभुपाद जी के अनुवाद का तात्पर्य का, प्रभुपाद ने तात्पर्य एक शब्द पे लिखा है। आपके विचार में कौन सा शब्द इस श्लोक में ऐसा महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है? श्लोक का शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एकांत बुद्धिम एकांत संस्थिताम। ये शब्द जब आप बुद्धिम एकांत संस्थाम पढ़ते हो तो कोई चीज आपके मन में ऐसे आती है, कहीं पढ़ा हो आपने, संकेत में देता हूं, भगवत गीता में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना, ये इसका अर्थ है। उनकी बुद्धि एकाग्र हो गई, एक जगह लग गई, इसका अर्थ है। हमारे प्रचार का उद्देश्य होना चाहिए बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाएं। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि को भगवान के काम में लगाएं। बुद्धि कोई बकरी थोड़ी है पकड़ के ऐसे भगवान के मंदिर में लाएंगे। तो बुद्धि का काम क्या है वो समझना चाहिए। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना, विवेक। क्या काम है बुद्धि का? विवेक, निर्णय करना, क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे प्रचार से लोगों की बुद्धि में विवेक को जगाना है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको समझ लो। और सही जो है वो एक है, भगवान, और सही है एक भगवान की भक्ति, और बुद्धि को लगाओ उसमें, तो गलत क्या है? बाकी सब गलत है। दूसरा तो एक नहीं है, एक कौन है? एक सिर्फ भगवान है और कोई एक नहीं है। एक भगवान है, उसमें बुद्धि लगे श्री प्रभुपाद जी शुरू कैसे करते हैं? बुद्धि एकांत संस्थान शब्द सूचित करते हैं कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था उस निष्कर्ष कर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावना अमृत है। इसमें भी एक शब्द इस लाइन में बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद ने कहा, क्या लिखा? उससे पहले इस वहां तक पहुंचने से पहले एक शब्द है, जिन्होंने सुना वो इस निर्णय पे पहुंचे, क्योंकि वहां तो और भी लोग थे, उन्होंने सुना ही नहीं। तो सबसे मुख्य भक्ति में क्या है? शरवण। और इस शरवण का श्री प्रभुपाद ने सातवें अध्याय के पहले श्लोक में शरवण की विधि और उसका फल बताया है। किसी को याद है वहां उसमें शरवण शब्द है क्या सातवें अध्याय के पहले श्लोक में? मय्यासक्त मना पारथ योगम युञ्जम मदाश्रय असंख्यम समग्रम मा यथा ज्ञासी तथा शृणो सुनो। और उसके ऊपर पूरा प्रभुपाद जी का तात्पर्य सात के एक में, और शरवण का ये तात्पर्य प्रभुपाद जी के अमेरिका में उतरते समय, अमेरिका की धरती के ऊपर चरण रखते समय इस शरवण वाले सिद्धांत को, ये शरवण का जो सिद्धांत है ये भक्ति का भागवत धर्म का मार्ग है। और प्रभुपाद ने वहां एक भजन लिखा है, उसका नाम क्या है? मार्किणी भागवत धर्म। और उसमें इस शरवण की महिमा का वर्णन किया है। कहां से शुरू किया है? श्रवणताम स्व कथा कृष्ण, नहीं, उससे थोड़ा पहले शुरू किया है। भाई जो कृष्ण की कथा सुनेगा तो कथा में रुचि होनी चाहिए ना। अब कथा में रुचि कैसे उत्पन्न हो, यह मेरा आपसे प्रश्न है। कथा में रुचि कैसे उत्पन्न हो? यह सब बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ये कथा में रुचि, वासुदेव कथा रति कैसे हो? सा महत सेवया, भक्तों की सेवा करने से। ये फिर आ गया, भक्तों का संग करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे तो कथा में रुचि होगी। ये कहीं और देखने जाने की जरूरत नहीं है कि कथा में रुचि आपको कहां है कहां नहीं है, कथा तो रोज यहां हो रही है और सुनने वाले बड़े श्रद्धालु आके बैठ रहे हैं, और उससे भी ज्यादा उत्सुक जो बिचारे हैं खड़े खड़े के सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। नहीं, ये भी शाबाश है, बहुत बड़ी बात है कि खड़े खड़े भी सुन रहे हैं। परंतु थोड़ा बाहर निकल के देखिए तो कुछ लोग आराम से बैठे हुए, और कहां बैठे हैं? प्रसाद के गेट के पास बैठे हैं कि लाइन पहले लगाए, वहीं बैठे हुए हैं कि लाइन में पहले हमको घुसना है अंदर। असल में होना यह चाहिए कि पहले घुसने वाले पहली लाइन में, दूसरे बाद में, ऐसे प्रसाद में घुटना चाहिए। ऐसा कोई नियम बनाया जाए तो कभी प्रसाद वितरण में परेशानी नहीं होगी। वो सुनना नहीं चाहते। अब देखो वहीं बैठे हुए हैं, दूर भी नहीं है और बैठे भी हैं, कान में कुछ नहीं जाने देंगे। बाहर में साउंड लगाएंगे तो कानों में वो लगाएंगे। भाई सुनना हो तो इच्छा तो करनी चाहिए ना। तो सुनने के लिए रुचि कैसे होगी? महत सेवया, महात्माओं की सेवा से, महात्माओं की सेवा से। और महात्माओं की सेवा है, कोई क्या पूछे तो क्या है? ये भी बड़ा आश्चर्य है, संत की सेवा हर नाम ध्याये, महात्मा की सेवा है हरे कृष्ण जपना। और प्रभुपाद ने भागवत में लिखा है, जब जो हरे कृष्ण महामंत्र को सावधानी से जपता है उसको भागवत और गीता और चैतन्य चरितमृत आदि पढ़ने में रुचि होती है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है भागवत में एक जगह पे। याद कर लीजिए, अगर आपको कथा में रुचि नहीं है इसका मतलब आपका जप अभी तक सही नहीं है। एक ये प्रमाण मिला कि नहीं? जप सही है, सही ठीक तरह से है तो हृदय शुद्ध होगा तो कथा में रुचि होगी, क्योंकि जप वो सही करेगा जो साधु की सेवा करेगा। भाई गुरु ने तो आदेश दिया है, महान साधु तो गुरु है, उसने हमको एक बात कहा है कि जप करो और वो ही नहीं करेंगे तो फिर भागवत में रुचि नहीं होगी। ये तो सिद्धांत हो गया एक। तो सुनने के लिए रुचि उत्पन्न होनी चाहिए और फिर सुनने से, देखो हमारे सारे साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है, हम जो ये भागवत सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं ये साधन भक्ति का अंग है। श्रवण किसका अंग है? साधन भक्ति का अंग है। आगे वाली भक्ति में भी आवश्यक है, परंतु श्रवण भक्ति का हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहे हैं श्रवण भक्ति? भाव भक्ति को जगाने के लिए क्यों कर रहे हैं? वो हमारे अंदर पड़ी है तैयार, उसको जगाना है, ये साधन का उद्देश्य है। और वो भाव भक्ति जगने के लिए अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठना अति आवश्यक है। और अनर्थ निवृत्ति से उठने का और कोई साधन हमको समझ में नहीं आता है, एक ही सर्वश्रेष्ठ साधन है जो आपको बिना प्रयास के अनर्थ निवृत्ति से ऊपर लेके निष्ठा तक ले जाएगा। तब ये रोज श्लोक पढ़ते हैं, क्या है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर भक्तिर भवती नष्ट की। वो निष्ठा वाली भक्ति तक पहुंचने के लिए नित्य भागवत सेवन अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो जो हमारा उद्देश्य है साधन का, उसकी प्राप्ति के लिए ये साधन, पांच साधन, प्रबल साधन पांच महाप्रभु ने कहे हैं। भक्ति के 64 में पांच को बहुत प्रबल साधन कहे हैं। थोड़ा सेवन भी भाव को उदय कर सकता है। उन पांच साधनों में एक है भागवत अर्थ आस्वादन, भागवत अर्थ आस्वादन। और फिर लिखा है चैतन्य महाप्रभु ने, भागवत गीयते भागवत स्थाने, भागवत पुरुषों से सुनना चाहिए। और भागवत पुरुष महान शिला प्रभुपाद है जिसका तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। और भागवत में जो चरित्र है वो सारे भागवत चरित्र हैं। हम तो केवल यहां जो भी कथा करने आता है वो उस चरित्र का वर्णन करता है, तो भागवत का वो अनुगामी बनता है, उसकी बात को हम तक पहुंचाता है। तो ये मुख्य शब्द इसमें कौन सा था? जिन्होंने सुना उन्हों को तो सफलता मिली, और जिसने नहीं सुना वो रह गए। और दूसरा शब्द कौन सा मुख्य है इसमें? जिन्होंने तो उपनिषदों को सुना था उस निष्कर्ष का पहुंचक। निष्कर्ष शब्द किसका सूचक है? बुद्धि का काम है निर्णय करना। उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि सार क्या है, समझ गए। जो सुनेगा वो सार को समझेगा। इसलिए श्रोता में एक श्रोता को हंस श्रोता कहते हैं भागवत में। कुछ अवर श्रोता हैं, कुछ वर श्रोता हैं। आपने सुना है कभी? चार प्रकार के अच्छे श्रोता और चार प्रकार के निमन श्रेणी के श्रोता, ये भागवत के स्कंद पुराण के मातम में है। तो जो वर्ष जो अच्छे श्रोता है उसमें एक का नाम है हंस श्रोता। क्या है? सार ग्रही। हंस का काम जैसे खीर को नीर से अलग करना, दूध से पानी को अलग करना, ऐसे जो हंस श्रोता है वो सार को ले लेता है, उसको नहीं भूलता है। तो अच्छा श्रवण करने वाला जो निर्णय कर ले के क्या लेना है वो हंस श्रोता है, उसको हंस श्रोता कहते हैं। इसके बाद एक श्रोता है, उसका नाम है सुख श्रोता। जो सुने वो जाके दूसरों को सुनाए, ये भी श्रोता बहुत अच्छा है। सुनो और दूसरों को जाकर सुनाओ, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। दो लाभ होंगे बहुत बड़े। पहले तो आपने जो सुना है वो कम से कम आपको याद रहेगा, और दूसरा इससे बड़ा लाभ है, आप किसी को सुनाओगे ना तो आपको वैसे ही जीवन बिताना पड़ेगा जैसे सुना रहे हो, नहीं तो लोग आपको कहेंगे क्या कह रहे हो। इसका मतलब आपको अगर जीवन में उदाहरण बनना है तो प्रचार करो, तो प्रचार को उदाहरण बनना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रचार किसी काम का नहीं। तो सुनाना चाहिए, बाहर निकलो कहीं ना कहीं दो आदमी पकड़ो और उनको आज सुना है वो सुनाओ। प्रचार भी हो गया, आपने जो सुना था वो आपको याद भी हो गया, और आपको वैसा जैसे बोल रहे हो ऐसा बनने के लिए प्रेरणा मिलेगी। बहुत जरूरी है ये सुनाना बाहर जाकर। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई सुनाता है बाहर जाके कथा सुन के, ये सच है कि झूठ है? प्रभुपाद जी ने जो सुनाया, अगर प्रभुपाद जी के शिष्य ने जाकर और जगहों पे नहीं सुनाया होता तो ये कृष्ण भावना अमर संघ की स्थापना हुई होती नहीं। प्रचार ही सार है, इसका क्या अर्थ है? सुनो और सुनाओ, सुन के अपने पास मत रखो। अपने पास रखोगे सुनाओगे नहीं ना तो भूल जाएगा, ये दो चार दिन में भूल जाएगा। दो चार दिन में क्या, अभी जाके प्रसाद खा के पानी पिया गया। प्रचार ही सार है। तो एक तो सुनना मुख्य है, दूसरा है सुनने से निर्णय करना। निर्णय क्या किया उन्होंने, मानव जीवन में कृष्ण भावना एकमात्र क्या है, एकमात्र लक्ष्य है। जो ठीक तरह के से सुनेगा और सही व्यक्ति से सुनेगा तो इस निर्णय पे पहुंचना चाहिए कि कृष्ण मात्र एकमात्र, कृष्ण भावना एकमात्र साधन है। तथ्य यह है कि जो भी शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्त की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है वो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो जाता है और भौतिक जीवन से विक्षिप्त नहीं होता। देखो चार लाभ लिखे हुए हैं। क्या लिखा है पहले, तथ्य ये है। तथ्य ये का मतलब सिद्धांत ये है, वास्तविक सिद्धांत ये है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है, इसका मतलब शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए। अब पूछोगे कैसे करें शुद्ध भक्त का संग, शुद्ध भक्त का संग कैसे करना चाहिए, तो लिखते हैं और उसके उपदेशों को सुनता है। ये है शुद्ध भक्त के संग का अर्थ, उसके उपदेशों को सुनना। तो इसका इसे दो अर्थ समझें, शुद्ध भक्त वो है जो भागवत का उपदेश करे, और शुद्ध भक्त का संग वो कर रहा है जो उससे सुन रहा है। तो इसमें दोनों के लक्षण है। शुद्ध भक्त कौन है, जो भागवत हरि कथा करता है, और शुद्ध भक्त के संग का लक्ष्य क्या है, उसको ध्यानपूर्वक उसके शिक्षाओं को उपदेशों को सुनना। आपको मालूम है भक्ति का शुभारंभ कैसे होता है, भक्ति का शुभारंभ होता है कई जन्मों के भक्ति जनक शुभ, जब पुण्य इकट्ठे होते हैं ना भक्ति जनक शुभ कण, तब शुद्ध भक्त की संगति मिलती है। और शुद्ध भक्त की शिक्षा को ग्रहण करते हैं तब भक्ति शुरू होती है। अब सिद्धांत क्या हुआ, कि आपके एक जन्म के नहीं, कई जन्मों का शिला रूप गोस्वामी लिखते हैं, कई जन्मों का भक्ति जनक पुण्य जब कठा होता है। भागवत सुनने के लिए दूसरे श्लोक में लिखा है, सुकृति भी तत्क्षणात अवरुद्यते, भगवान हृदय में उसके आएंगे तत्क्षण जल्दी कथा सुनने में, जिसकी सुकृति का उदय हुआ है। ये सुकृति कौन सी है? भक्ति जनक सुकृति। तो हमारे भक्ति जनक सुकृति का लाभ क्या है? शुद्ध भक्तों का संग। और कृष्ण भावना में श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का संग भी शुद्ध भक्त का संग है। मंदिरों में आए जो, ये भी इतने सारे लोग रोज आ रहे हैं, आकर्षित हुए हैं ना तब आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको संग मिल रहा है। अब उनको प्रचार करना है हमको, अब उनको संग का लाभ देना है, हमको प्रचार करना है, क्योंकि हम तो तब कहलाएंगे कि भक्त हैं, और उनको ठीक तरह से उस उपदेश को सुनना है, तब क्या होगा? देखो लिखा है, पहले शुद्ध भक्त का संग, फिर उसके उपदेशों को सुनना, तब क्या होगा है? वो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो जाता है। कृष्ण भावना अमृत में स्थिर होना, इसका अर्थ है साधन भक्ति को निष्ठापूर्वक करना, तो स्थिर हो जाता है। फिर क्या होगा? और उसके क्या लिखा है, भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता, ये क्या होता है? भौतिक चेतना उससे विक्षिप्त नहीं होता, इसका अर्थ क्या? प्रभु जी कहते हैं भोग बुद्धि से मुक्त हो जाता है, भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता। तो भौतिक चेतना क्या है? भौतिक चेतना तो ये प्रभुपाद दो चेतना, कृष्ण चेतना और भौतिक चेतना, दो चेतना है। कृष्ण चेतना में जो स्थिर होगा वो भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता, इसका अर्थ ये हुआ। आप कृष्ण चेतना में स्थिर हो गए तो भौतिक चेतना आपको विचलित नहीं करेगी, उससे विक्षिप्त नहीं होंगे। तो भौतिक चेतना क्या है ये भी तो समझना चाहिए, अभी हम विकसित हो रहे हैं कि नहीं। भौतिक चेतना है इंद्रिय तृप्ति। प्रभुपाद जी एक शब्द लिखते हैं सदा भौतिक चेतना के लिए, भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामिता जन बताने का, लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर, एक ये है भौतिक चेतना, भौतिक प्रकृति का स्वामी बनने का सपना, ये सपना है क्योंकि सच्चा तो हो नहीं पाएगा, तो भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने का सपना, वो अब उसको विक्षिप्त नहीं करेगा, अब वो क्या हो गया? सेवक हो गया। तो ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना से हमारा एक मुख्य क्या एक चीज है कृष्ण भावना में स्थित होने का अर्थ, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, ये हुई कृष्ण भावना में स्थिरता। तो इससे पहला लाभ क्या हुआ? भौतिक भोग से विरक्ति, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले कुछ और होना चाहिए। भोगित भौतिक भोग से विरक्ति तो हो गई, परंतु कृष्ण भगवान है और हम सेवक हैं, इससे आएगी निम्रता। क्या आएगा? निम्रता। निम्रता नहीं आई और केवल मैं भक्त हूं ये आ गया तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत में क्या समझाया है, पहले क्या है? तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, ये है निम्रता। इसके बाद वाला श्लोक क्या है? न धनम न जनम न, वो क्या है? भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होना। तो पहला क्या आना चाहिए? निम्रता। पहली आनी चाहिए निम्रता, और निम्रता आती है जब हम समझते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं। और ये हम तब समझेंगे जब प्रचार करने वाला अपने आप को सेवक समझेगा। प्रभुपाद जी ने जब प्रभुपाद जी जब पत्रकार ने पूछा कि इतना बड़ा इस वक्त विश्व विख्यात जॉर्ज हैरिसन क्या आपका शिष्य है, तो प्रभुपाद जी थोड़ी देर शांत रह के क्या उत्तर दिया, नहीं मैं सबका सेवक हूं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मैं सबका सेवक हूं। जो ऐसा शिक्षा देने वाला होगा वो हमारे अंदर निम्रता लाएगा, नहीं तो कोई और होता, इतना बड़ा व्यक्ति मेरा शिष्य है वो दुनिया में ढंढोरा पीटता, सुनो ये प्रधानमंत्री मेरा शिष्य है, ये बड़ा बड़ा कलाकार मेरा शिष्य है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, वो निम्रता नहीं दिला सकते। और निम्रता नहीं आएगी तो महाप्रभु के शब्दों में भौतिकता के चेतना से मुक्त होना संभव नहीं है। तो पहले क्या आना चाहिए, निम्रता। और ये निम्रता ज्ञानियों में निम्रता नहीं आती, भक्ति में निम्रता आती है, क्योंकि हम अपने आप को छोटा समझते हैं। वो कहते हैं मैं भी ब्रह्म हूं, तो निम्रता कहां से आएगी, पर निम्रता आएगी नहीं ना। और प्रभुपाद जी एक दिन कहने लगे, ये सब कहते हैं हम भगवान बन जाएंगे, बनने दो, लेकिन भक्त तो भगवान का पिता बन जाता है, तो हम इसके बाप बन जाएंगे और क्या, बनने दो इनको भगवान, हम इनके फिर भी बाप बनेंगे। तो उसमें निम्रता नहीं आएगी, अपने आप को समझेगा कि मैं भगवान हूं, तो निम्रता कहां से आएगी, वो भौतिकता को तो छोड़ देगा, त्याग तो आ जाएगा, परंतु बिना निम्रता के भक्ति नहीं चलती। भक्ति के लिए निम्रता अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो ये सिद्धांत जो भक्ति का है, ये पहले हमारे अंदर निम्रता लाए और भौतिक चेतना से विक्षिप्त होने से बचाए। निम्रता आएगी तब बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। अब अंतिम लाइन पढ़ रहे हैं, शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में इसे विशेषता देखा, अतएव वे डर गए। देखा कि ये सारे ही भक्त बन गए तो वो डर गए, क्योंकि सारे विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होता जा रहा था। एक पत्रकार ने प्रभुपाद से पूछा था, आप इतना प्रचार करोगे सब भक्त बन जाएंगे, फिर प्रभुपाद ने कहा आप जैसे मूर्ख बहुत रह जाएंगे, चिंता मत करो। प्रभुपाद ने उसी को कहा कि आप जैसे मूर्ख बहुत रह जाएंगे, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक जगह भक्ति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ये चिंता मत करो सब भक्त बन गए और भगवान के धाम चले गए तो दुनिया खाली हो जाएगी, बहुत से मूर्ख भर देंगे दुनिया को, आप ये चिंता मत करो कि दुनिया खाली हो जाएगी, ऐसा मत सोचो। और एक ब्रह्मांड अगर मुक्त भी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, एक राई का दाना गिर गया बोरी में से, कौन पूछता है उसको। तो इसलिए ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सब भक्त बन गए तो क्या होगा, लेकिन ये परेशान हो गया। एक मंदिर के अध्यक्ष ने हमको कहीं कहा था, हमको कहता है हम मंदिर के अध्यक्ष हैं, बाहर बहुत प्रचार करते हैं, परंतु अपने पुत्रों को कहते हैं अरे बैठ के पढ़ो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम में और हिरण्याकश्यप में कोई अंतर है क्या? उसने कहा हम में और हिरण्याकश्यप में कोई अंतर है क्या, मैं हूं मंदिर का अध्यक्ष, लेकिन अपने पुत्र को कहता हूं कि स्कूल का कब पढ़ो बैठ के, मंदिर में मत जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं। वो अच्छी अनुभूति है कि मैंने क्यों रोका, फिर मंदिर तो ले जाना चाहिए ना। उंगली से पकड़ के बचपन में अपने संतान को मंदिर ले जाओगे तो बुढ़ापे में आपकी लकड़ी पकड़ के खड्डे से गिरने से बचाएगा, बहुत जरूरी है। आपने मंदिर नहीं भेजा तो इंतजार करो, आपको भी यमलोक भेजेगा, नहीं छोड़ेगा जैसे मौका मिलेगा। तो प्रचार हमारा होगा और असुर लोग डरेंगे, ये भी सत्य है, और असुर लोग डरेंगे तो हमको डरना नहीं चाहिए उससे, हमको निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान प्रचार करने वाले के साथ है और हम सब समस्याओं का समाधान कर देंगे और प्रचार को करते रहेंगे। प्रभुपाद ने कई जगहों पर लिखा है प्रचारकों को बहुत संकट आते हैं, बड़ी बाधाएं आती हैं, परंतु वो प्रचार के कार्य को कभी नहीं छोड़ते। आपने कभी प्रचार किया और लोग उससे डर गए? आपको अनुभव है लोग डर गए? आपको नहीं डरना चाहिए, ये बहुत मुख्य बात है। आपको और तीव्र प्रचार करना चाहिए। वो डरने वाले कम से कम भगवान का नाम सुन के डरे हैं ना, तो ये भी अच्छा है। अभी तक वो भोग में लगे हुए थे, अब उनको डर लगा है कि ये भगवान का नाम ले तो कहीं जाके शिकायत कैसे करेंगे? हिरण्यकशिप को क्या बोला होगा जाके शंडोरा कामर करने? वो प्रहलाद महाराज ने सारी क्लास हाउस पूरे कक्षा में सबको हरे कृष्णा मंत्र जपा रहा है, तो हरे कृष्णा तो बोला ना संडोरा मर्क में, तो उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? भाई शिकायत कैसे करेगा? वो एक व्यक्ति को कहा कि तुम जाके इसको हरे कृष्णा जपाओ। उसने कहा तुम हरे कृष्णा जपो। बोला हरे कृष्णा नहीं जपूंगा। बोला काम हो गया। बोला तो थी तुमने तो बोल ही दिया। हाँ भाई ऐसे नहीं जपूं कहते हुए फिर भी बोलना पड़ रहा है। तो वो लोग जो है जो डरते हैं वो अनजाने में भगवान का नाम जप लेते हैं, ये भी उनकी सुकृति कठी हो जाएगी। भाई सुकृति ये कठी हुई कि उनके डर के कारण उनको नरसिंह देव का दर्शन हुआ, लेकिन भयभीत हो गए, डर गए, परंतु दर्शन उनके डर से भी दर्शन हो गए। भयाद भयाद कंसात द्वेषाद चेदी आद्य, ये भागवत का श्लोक है। भय से भी भगवान को पा लेते हैं। तो ये प्रचार के दो फायदे हैं, जो मानेगा वो भी पाएगा, न मानेगा उसका भी भला होगा। ये तो डबल फायदा हो रहा है प्रहलाद के प्रचार से। भाई उनको भी हिरण्यकश्यप ने देख का दर्शन तो हो गया, किसी को मारा, जिसको मारा उसको तो तार दिया भगवान ने। तो ये भी प्रचार का फल ही है। तो यह हमारी कथा पूरी होती है। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो, हमने आज सुना श्रवण, भक्तों का संग, जीवन में निर्णय लेना, विवेक बुद्धि होना और एक भक्ति को जीवन का लक्ष्य बनाना, भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होना, इसके लिए निम्रता अति आवश्यक है। आप में कोई टिप्पणी या कोई एक प्रश्न है? हाँ प्रभु जी। बुद्धि का कार्य क्या है? हमने कहा था बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, विवेक, सही और गलत को निर्णय करना। वो बुद्धि भी तीन प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो कथा सुनेगा वो निर्णय करेगा कि भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और भौतिकवाद से दूर हो जाएगा। ये बुद्धि का काम है, बुद्धि का काम है निर्णय करना, और निर्णय हम तब करेंगे सही जब हम अच्छे भक्तों का संग करेंगे, तो सही निर्णय करेंगे, नहीं तो दुनिया के अंदर फंसे रहेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, श्री भागवत महापुराण की जय।